वाणी चल रही थी, दूसरी मार्च 1968, दो पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। बहुत वंडरफुल बातें हैं। मैं तुम बच्चों को आकर के अपना और सारी रचना का परिचय देता हूँ, फिर भी कोई फारकति देते हैं, कोई डाइवोर्स दे देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। बोलने वाली आत्मा कौन है? शिव। वो आत्मा कहती है मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मेरी बिंदी का नाम शिव है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो राम नाम तो शरीर का है या आत्मा का है? राम और कृष्ण नाम जो पड़ता है वो आत्माओं का नाम है या शरीरधारियों का नाम है? शरीरधारियों का नाम है। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण बच्चा हूँ। क्या कहते हैं? मैं राम बाप हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण बच्चा हूँ ये नहीं कहते, मैं राम बाप हूँ, तुम सब सीताएं हो। इससे साबित ये हुआ कि शिव ज्योति बिंदु जब शरीर में आता है तो बाप के रूप में राम वाली आत्मा के शरीर में आता है पहले पहले, क्योंकि परिवार में पहले कौन होता है? बाप। तो शिव बाप आते हैं तो यज्ञ के आदि में भी पहले पहले बाप में प्रवेश करते हैं। और षष्ठी उत्पत्ति की प्रक्रिया में सिर्फ बाप ही तो नहीं होता है, माता भी होती है, दोनों साथ ही साथ होते हैं। तो माँ में भी प्रवेश करता है, बाप में भी प्रवेश करता है। माँ में प्रवेश करता है, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालता है सुनने सुनाने का, और बाप में प्रवेश करता है समझने और समझाने के लिए। इसलिए बोला तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो, मैं राम बाप एक ही हूं। सबको रावण की जंजीर से छुड़ाने आया हूं तो अटेंशन से पढ़ना चाहिए। अगर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा? ज्यादा जन्मों तक जंजीरों में बंध ही रहना पड़ेगा। अभी मैं आया हुआ हूं छुड़ाने के लिए, ये कमाई है, सच्ची कमाई है जन्म जन्मांतर की। 21 जन्म के लिए तो पक्की है, आत्मा कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं आती। बाकी बाद में नंबर बार बंधन में आते जाते हैं। तो अटेंशन से ये पढ़ाई करनी चाहिए ना। सोचना चाहिए भगवान कितना ऊंच बनाते हैं, कितना ऊंच बनाते हैं। इतना ऊंच बनाते हैं जिससे ऊंच पद और कोई होता ही नहीं दुनिया में। हिटलर, नेपोलियन बड़े बड़े हुए महत्वाकांक्षी, सारे विश्व के ऊपर राज्य करना चाहते थे, इतने बड़े बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं सके। वो बाहुबल से बनना चाहते थे और बाहुबल पांच तत्वों से कनेक्टेड है या आत्मा से कनेक्टेड है? पांच तत्वों से कनेक्टेड है बाहुबल। पांच तत्व माने प्रकृति के तत्व, और प्रकृति रचना है या रचयिता है? प्रकृति तो रचना है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है। बाप ताकतवर होता है, बच्चे तो उतने ताकतवर नहीं होते। तो आत्मा रचयिता है और शरीर के पांच तत्व जिनसे ये शरीर बनता है वो रचना है। तो बोला कि इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी दुनिया में हिस्ट्री में हुए, वो भी बाहुबल से सारे विश्व के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सके, विश्व के मालिक नहीं बन सके, और मैं तुम्हें आकर के सारे विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम देवताओं के भी मालिक बनते हो, आसुरी सृष्टि के भी मालिक बनते हो, तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर मिस करते हैं तो अपना घाटा डालेंगे। अच्छे स्टूडेंट्स कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करते हैं और लेट भी नहीं आना चाहिए। दो बातें, क्या रेगुलर भी होना चाहिए और पंक्चुअल भी होना चाहिए। पंक्चुअल माना ठीक टाइम पर आने वाला। बाबा आवेंगे रथ पर सवार होकर के पढ़ावेंगे, बाबा कहते हैं मैं ही आकर के राजधानी स्थापन करता हूं, ऐसे नहीं कि रथ पर आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला जाता हूं ब्रह्मा के तन में, फिर तुम अपने आप अपनी राजधानी स्थापन कर लेते हो। नहीं, मैं आता हूं ब्रह्मा के तन में, सुनता हूं सुनाता हूं, तुम्हारी बातें भी सुनता हूं, लेकिन समझाता नहीं हूं। मां के रूप में क्या करता हूं? सुनता हूं सुनाता हूं। बेसिक नॉलेज जैसी पढ़ाई पढ़ाता हूं, गहरी बातें समझाता नहीं हूं, क्योंकि मेरा पार्ट है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता के रूप में बेसिक नॉलेज पढ़ाता हूं। मां क्या करती है बच्चे में? बच्चों को छोटी छोटी बातें ज्ञान की बताती, बच्चे होशियार हो जाते हैं तब थोड़ी पढ़ाई पढ़ाती। ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए फिर ऊंची स्कूल में जाना पड़े। बताता हूं तुम बच्चों का आगे चल के क्लास ट्रांसफर होगा। मुरली ने बताया ना, तो बेसिक पढ़ाई पूरी होती है, क्लास ट्रांसफर होता है, फिर मैं टीचर के रूप में पढ़ाता हूं समझाता हूं, एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता हूं। टीचर का काम ही है पढ़ाना, लेकिन टीचर कौन से स्टूडेंट से खुश रहता है? जो स्टूडेंट रेगुलर होते हैं और पंक्चुअल होते हैं, भले कोई होशियार भी हो जाए लेकिन अगर रेगुलर नहीं होता है, पंक्चुअल नहीं होता है, तो टीचर समझता है ये हमारा अपमान करता है क्या, ये हमको रिगार्ड तो टीचर की दुआएं मिलेंगी? टीचर की दुआएं मिल नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं मैं सिर्फ आकर के पढ़ाई ही नहीं पढ़ा के चला जाता हूं, तुम्हारी राजधानी भी स्थापन करता हूं, और जो भी धर्म पिताएं हुए हैं भले कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हुए, क्राइस्ट 100-200 करोड़ क्रिश्चियंस में मान्यता प्राप्त है, 200 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना फादर मानते हैं, लेकिन वो हद का है। और राजधानी स्थापन नहीं करता है, सिर्फ धर्म स्थापन करके चला जाता है। और मैं धर्म स्थापना के साथ साथ तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाता हूं, वो तो पढ़ाई नहीं पढ़ाते, वो मर्तबे की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, और मैं तुम्हें राजाई की पढ़ाई पढ़ाता हूं, राजयोग सिखाता हूं। जिस राजयोग का गीता में आज भी गायन है, नाम क्यों पढ़ा राजयोग? राजाई देखा हूं, और राजाई में भी कोई छोटे राजा हैं, कोई बड़े राजा हैं, कोई नाम मात्र के राजा हैं, परंतु कोई धर्म पिता ने, कोई धर्मात्मा ने, कोई भी महात्मा ने, ऋषि मुनि सन्यासी ने राजाई की पढ़ाई कभी नहीं पढ़ाई। जन्म जन्मांतर ये जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, कोई पूछे इनको ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई, तो कोई बता देगा? कोई नहीं बता सकता कि ये कंट्रोलिंग पावर इन राजाओं में ही कहां से आ गई। मैं आकर के बताता हूं कि ये राजयोग की पढ़ाई से तुम नंबरवार राजा बनते हो, कोई रानी बन जाते हैं, कोई महारानी बन जाते हैं, कोई राजा कोई महाराजा बनते हैं, नंबरवार मर्तबे हैं राजधानी में। राजधानी में तो सब तरह की चाहिए ना, तो मैं आकर के राजधानी स्थापन करता हूं, और कोई भी आकर के राजधानी स्थापन करके नहीं जाता है। वो धर्म पिताएं आते हैं तो उनके पीछे पीछे जो आने वाले फॉलोअर आत्माएं हैं परम धाम से आती हैं, पीछे पीछे आकर के ऐड हो जाती है, उनके धर्म की जनसंख्या बढ़ाई देती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए और आंतरिक खुशी भी होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, रात्रि क्लास था। अगला छोटा सा रात्रि क्लास है, तीन 5-68 का। बाबा राजयोग सिखलाए रहे हैं, कहते हैं काम महाशत्रु है, राजयोग के रास्ते में महाशत्रु कौन सा है? काम महाशत्रु है। अगर ऐसे शत्रु की चपेट में आ गए तो बच्चे अनुभव तो करते हैं। बाबा की याद आना बंद हो जाती है या तो बहुत धीमी हो जाती है। राजयोग के रास्ते में ये काम बहुत बड़ा रोड़ा है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। कहते हैं काम जीते जगत जीत, फिर ये नहीं कहते माया जीते जगत जीत है? माया जीते जगत जीत भी कहते हैं, लेकिन माया के जो भी मुखिया हैं, माया के जो भी सहयोगी हैं, उनमें बड़े से बड़ा सहयोगी कौन है? काम पिता। इसीलिए कहते हैं कि काम महाशत्रु है। माया भी तो शत्रु है ही, शत्रु है कि तुम्हारी बहन है? है? बाप की बेटी है तो बड़ी दीदी हुई ना। कोई कहते हैं माया मौसी, अब माया भी रूप धारण कर लेती है तो मौसी भी हो जाती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, माया तुम्हारा दुश्मन है माया रावण, और फिर मन जीते जगत जीत भी कहा जाता है। क्या? मन को अगर जीत लिया, कंट्रोल कर लिया, तो भी सारे जगत के ऊपर राजाई कर सकते हैं। और मन का आकर्षण सबसे ज्यादा माया के कौन से रूप पर होता है? काम विकार पर। इतना ज्यादा हावी होता है कि जब मनुष्य मरता है, पुरुष मरता है, तो अंतिम समय में स्त्री चोला ही याद आ जाता है, काम के प्रभाव के कारण। और अंतमते सोगते, कौन सा चोला धारण करता है? स्त्री का चोला धारण कर लेता है। स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो सारे जीवन में वो काम विकार इतना हावी रहता है कि अंत समय में वो पुरुष चोला याद आ जाता है। तो कौन सा शरीर धारण करती है? पुरुष का चोला धारण कर लेती है। माने इतना लगाव लग जाता है कि कितनी भी शक्तिशाली आत्मा हो, ज्यादा से ज्यादा एक जन्म स्त्री चोला और ले सकती है, अथवा ज्यादा से ज्यादा एक जन्म और पुरुष का चोला ले सकता है। बस इससे ज्यादा कोई में ताकत नहीं है जो अपने को बचा सके। पावरफुल आत्मा होगी पुरुष चोले में तो एक जन्म पुरुष का चोला और धारण कर लेगी, क्योंकि अपने को कंट्रोल किया होगा, आकर्षण से बचा होगा, स्वरूप स्थिति में ज्यादा रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म और लेगा। दूसरे जन्म में तो माया शर्त ही उसको हावी हो जाएगी और कन्वर्ट कर देगी स्त्री चोले। माना ये काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आजकल मंदिरों में शादी भी होती है, काहे के लिए होती है? शादी का मूल उद्देश्य क्या है? एम ऑब्जेक्ट क्या है? शादी नाम की जो संस्था बनी है, सारी दुनिया में शादी हो रही है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, किस लिए होती है? वही काम विकार का सुख भोगने के लिए शादी करते हैं, और वो भी कहाँ करते हैं? मंदिरों में, गिरजाघर में जाकर के शादियां होती है। ये धर्म समझ लिया है क्या? ये धर्म की सबसे बड़ी धारणा समझ रखी है। जिस धर्म से सुख होना चाहिए उन्होंने शादी का धर्म बनाया कि वो धर्म की काम है और इससे सुख होगा। बाप कहते हैं सुख के बजाय और ही दुख होता है। क्यों? जिस काम के शुरुआत में फाउंडेशन में दुख होगा तो आदि मध्यंत दुख चलता ही रहेगा, खत्म नहीं हो सकता। काम विकार सब कोई अनुभव करता है कि इसका सूत्रपात जहां से होता है उस समय स्त्री पुरुष को कमजोरी आती है। जब पैदा करने वाले रचयिता को ही कमजोरी आती है, अचेतनता आती है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो तो रचना है, रोते रोते पैदा होगा या खुश होते हैं हंसते हुए पैदा होगा। सचिव में तो बच्चे हंसते हुए पैदा होते हैं, खुश होते हुए पैदा होते हैं, खुशी की पैदाइश होती है, क्योंकि वहां ऐसा कोई दुख का काम करते ही नहीं। यहां तो फाउंडेशन में ही दुखी हो जाते हैं, असक्त हो जाते हैं, पतित बन पड़ते हैं, क्षरित हो जाते हैं, शक्ति छीण हो जाती है, अनुभव करते हैं। तो फाउंडेशन में ही जिसका दुख बढ़ गया तो सारे जीवन में दुख की दुनिया और अंत समय में भी हिलकोरे लेते लेते शरीर छोड़ते हैं, घावड़े मारते मारते शरीर छोड़ते हैं ना। तो आदि मध्य अंत ये दुख देने वाला है, ये दुनिया नहीं जानती, न धर्म पिताएं जानते हैं, न कोई ऋषि मुनि महात्माएं जानते हैं। उन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में देवताओं को भी ऐसे ही समझ लिया कि वो भी विकारी थे। अगर विकारी थे तो उनकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा पवित्रता की होती है, जरूर उन्होंने पवित्रता को धारण किया है, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किया है। तो बाप कहते हैं आज तो मंदिरों में भी शादी करते हैं परंतु लक्ष्मीनारायण तो पवित्र रहते हैं, उनके मंदिर में कितनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं। कथा करते हैं जिस दिन सत्यनारायण की, उस दिन पति पत्नी कितना पवित्र होकर के शुद्ध होकर के जीवन बिताते हैं। अपवित्र होते हैं क्या? नहीं, उस दिन खास पवित्रता का ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्मी नारायण पवित्र होते हैं, उनके मंदिर में जाकर के ये शादी क्यों रमाते हैं? अकल में ही नहीं आता। तो बाबा ने लिख भेजा मंदिर में शादी कराने वालों को कि तुम कितने पापात्मा हो। लक्ष्मीनारायण के मंदिर में भी जाकर के तुम पाप के काम करते हो। भगवान वाच, गीता में भी लिखा हुआ है क्या? काम महाशत्रु है वो, आदि मध्यंत दुख देने वाला है काम विकार, जिससे आज की सृष्टि की पैदाइश हो रही है, दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है। वो काम विकार आदि में भी और सारे जीवन में, मध्य में भी और अंत में भी दुख देने वाला है। अंत में दुख देता है, इसका मतलब नरक की दुनिया में जन्म होगा या स्वर्ग में जन्म होगा? अंत मते दुख की स्टेज में शरीर छोड़ेंगे तो दुख की दुनिया में ही जन्म लेंगे, सुख की दुनिया में तो जन्म ले नहीं सकते। नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो बाप आकर के अभी राजयोग सिखाने आए हैं कि मन को ऐसा कंट्रोल करो जो दुनिया में कितना भी दुख बरपा हो रहा हो, कितने भी दुख की स्थितियां पैदा हो रही हो, अशांत वातावरण हो, लेकिन तुम अपने मन को कंट्रोल कर सको। सुखमयी स्थिति में शरीर छोड़ो, ऐसी मैं राजयोग की प्रक्रिया सिखाता हूं। काम पर जीत पाने में ये लक्ष्मीनारायण जगत जीत बने हैं पहले। इसलिए इनकी पूजा होती है, घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है, कथा होती है, किसी और देवता की भी कथा होती है, सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। एक ही सत्य है, जो पहले पहले झूठ पर विजय पाता है। इसलिए एक सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की कथा होती है। लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में, फिर लक्ष्मी की कथा होनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा क्यों गाई हुई है? देवताओं में जब युगल देवता है उनमें सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। तो नारायण जब सत्य कहा जाता है तो उसका नाम पहले होना चाहिए, फिर राधा का नाम पहले क्यों कर दिया? लक्ष्मी का नाम पहले क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया, सत्य बोलना बड़ी बात है, सच्चा रहना बड़ी बात है। आदमी में कमजोरी है वो एक अलग बात, मनुष्य भूलें करता है, लेकिन एक मनुष्य भूल करता है और छुपा लेता है, गुरु से भी छुपा लेता है, माँ बाप से भी छुपा लेता है, और एक मनुष्य ऐसा है कि जो भूलें करता है लेकिन सही सच्चे दिल से बता देता है, माँ बाप को बता देता है, गुरु को बता देता है, क्योंकि सबसे बड़ा तो गुरु है। तो भगवान आकर के पतितपना देखता है, दुर्गुण देखता है, या पतितों को दुर्गुणियों को आकर के गुणी बनाता है? तो पतितपना देखता नहीं है वो, पतितों को आकर के गले लगाता है, पतितों को पावन बनाता है। पतितों को पावन बनाने वाला भगवान खुद कहते हैं कि अब तुमको इस काम पर जीत पहनना है, मन के ऊपर कंट्रोल करना है। इन लक्ष्मीनारायण के मंदिर में वो शादी करते हैं। जिन लक्ष्मीनारायण ने पहले पहले काम के ऊपर जीत पाई, मन को कंट्रोल किया, उन्हें अपने स्मृति पहले आ जाती है कि हम देवता थे, और मनुष्यों की इतनी जल्दी स्मृति नहीं आती है। तो लक्ष्मी नारायण जो जगतजीत बने हैं उनके मंदिर में भी तुम जाकर के शादी करते हो, कितने हैं पापात्मा हो। हम ब्रह्मा कुमारियां तो भगवान वाच सुनाते हैं, अपनी बात नहीं सुनाते। भगवान ने बोला है काम महाशत्रु है, काम चिच्छा से उतार करके ज्ञान चिच्छा पर बिठाते हैं, और ज्ञान ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी कहां से आती है? सारी दुनिया तो झूठ है, इस दुनिया में झूठी दुनिया में कोई छाती ठोक करके कह सकता है कि मैं कभी झूठा काम नहीं करता, झूठी बात नहीं बोलता, झूठे वाइब्रेशन नहीं निकालता, झूठी दृष्टि से नहीं देखता? कोई नहीं कह सकता। एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो आकर के सच्चा सिखाता है। सच्चा बाप है, सच्ची बात बताता है, उसको ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, किस चीज की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सच बात बता करके सचखंड सत्य युग स्थापन करता है। मनुष्य चाहे कि हम सचखंड स्थापन करेंगे, हो सकता है? जो सच्चा होगा वो ही सचखंड स्थापन करेगा, या झूठे हैं सचखंड स्थापन करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उनके फॉलोअर्स क्या कहने लगे? है मेगा प्रोग्राम बनाया, मेगा प्रोग्राम में फोटो बनाए, तीन तीन चित्र छपाए कि त्रिमूर्ति कोई अलग से नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु शंकर का कोई अलग से पार्ट नहीं होता, हमें ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है, और बड़े बड़े पोस्टर छपा करके तीन मूर्तियां लगा दी। देखे तो इससे क्या साबित हुआ कि मनुष्य अपन को भगवान कहने की कोशिश करता है कि मैं भगवान हूं, पुरानी दुनिया को बदल करके मैं स्वर्ग बनाऊंगा। आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गांधी जी ने क्या कहा? हम राम राज्य लाएंगे, हम स्वर्ग लाएंगे। लेकिन राम राज्य स्थापन हुआ कि और ही नरक बन गया, और ही नरक बन गया। बाप कहते हैं जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है क्या, न राम न कृष्ण, कि जो सच्ची बात जानता हो, सृष्टि के बारे में सच्चाई नहीं जानता, आत्मा के बारे में सच्चाई नहीं जानता, परमात्मा के बारे में भी सच्चाई नहीं जानता। मैं ही आकर के सच्चाई बताता हूं, मैं ही आकर के तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूं, तुमको अपना परिचय देता हूं, और तुम अपने बारे में भी जानते हो, मेरे बारे में भी जानते हो, सृष्टि के बारे में भी सच्चाई को जान जाते हो। तो कोई कहे कि सब मनुष्य जब झूठे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी तो झूठे ही होने चाहिए। अरे हम अपनी बात कहां सुनाते हैं, हम किसकी बात सुनाते हैं? हम तो जो बाबा ने बोला हुआ है, माउंट आबू से जो बाबा ने वाणी चलाई है, हम वही बातें तो बोलते हैं। उन बातों के बरखिलाफ अगर हम कोई बातें बोलते हो, कोई प्रूफ मिलता हो, तो कह सकते हैं कि हम तो मनुष्य की वाणी सुनाते हैं। हम तो कहते हैं कि काम चिच्छा से उतार करके ज्ञान चिच्छा पर बिठाने का काम एक परमपिता परमात्मा का है, और कोई मनुष्य मात्र का नहीं है। बोलो, तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो? कहेंगे हाँ, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, हम भी ब्रह्मा की संतान है। तो उनसे पूछो कि तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? उन ब्राह्मणों से भी पूछो कि तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे वो तो सूक्ष्म पतन में। अरे तो तुम यहां कहां से आ गए? ब्रह्मा जो रचना रचने वाला है, रचयिता है, वो इस सृष्टि पर होना चाहिए या सूक्ष्म पतन में सृष्टि होती है? सृष्टि तो यहां होती है ना, इस दुनिया में होती है ना, सूक्ष्म पतन में सृष्टि थोड़ा ही होती है। हमारा तो ब्रह्मा भी मौजूद है, और ब्रह्मा में प्रवेश करने वाला परमपिता परमात्मा भी मौजूद है, उसको कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्या वो तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? भले खुद निराकार है, वो निराकार तीन साकार मूर्तियों, मूर्ति माने मूर्त माने साकार, अमूर्त माने अमूर्त माने निराकार। मूर्ति दिखाई पड़ती है आंखों से, और जो अमूर्त है वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं खुद अमूर्त हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, आत्माओं का बाप हूँ, आत्माएं भी निराकार, आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु भी निराकार, मैं खुद अमूर्त हूँ। लेकिन इस सृष्टि में आकर के तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसलिए मुझे त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव जब कहते हैं तो तुम मानते क्यों नहीं हो कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, और सारी सृष्टि अभी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद नहीं है। हम जो कुछ सुनावेंगे, अगर हम ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात सुनावे तो हम ब्रह्मा कुमार, हम कोई दूसरी बातें सुनावे, शास्त्रों की बातें सुनावे, मनुष्यों की बातें सुनावे, तो हम ब्रह्मा कुमार नहीं। बाप का बच्चा कौन? जो बाप की बातों को काटे वो बाप का बच्चा? वो बाप की बात को ही ना माने वो बाप का बच्चा? बाप के आज्ञा बाप के फरमान को ना माने वो बाप का बच्चा? बाप कहते हैं ऐसा बच्चा तो मुआ भला, जो बाप की फरमान को मानता ही न हो, आज्ञाओं को मानता ही न हो, उसको अपना बच्चा समझना ही नहीं चाहिए। तो उन ब्राह्मणों से कहो, पहले तो अपना ब्रह्मा बाप बताओ कहाँ है। अगर है तो तुम ब्रह्मा कुमार, नहीं है तो तुम ब्रह्मा कुमार नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं न सतयुग में होते हैं, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कब होते हैं? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तब ही होते हैं। तो हम है संगम युग में और तुम हो कलयुग में। क्यों? अगर संगम युग में है तो हम बता सकते हैं कि ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन। तीनों इस सृष्टि पर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तीनों का पार्ट हमें पता है। और तुम अगर ब्रह्मा की औलाद हो तो तुम बताओ ब्रह्मा कहाँ है तुम्हारा। और अगर ब्रह्मा की बात मानते हो, ब्रह्मा भी मानते हो, तो फिर ब्रह्मा की बातों पर चलना भी पड़े। क्या ब्रह्मा ने तो मुरली में मुख से बोला है कि मैं आकर के राजधानी स्थापन करके जाता हूँ। देखो ये वाणी क्या कहती है, मैं राजधानी स्थापन किए बगैर चला जाता हूँ कि स्थापन करके जाता हूँ? मैं खुद राजधानी स्थापन करके जाता हूँ, सिर्फ धर्म स्थापन नहीं करता हूँ। तो बोलो, तुम तो भ्रष्टाचारी हो क्या? तुम श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन नहीं कर सकते। तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। तुम भ्रष्टाचारी बनाते भी हो और हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं क्या? हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं और हम श्रेष्ठाचारी ही बनाते हैं। कोई को भ्रष्टाचारी बनने की परमिशन नहीं देते। ये शादी आदि तो पापात्माओं का काम है। भगवान आते हैं तो शादी की संस्था ही कैंसिल कर देते हैं क्या? और मनुष्य गुरु, चाहे वो दुनिया में मनुष्य गुरु हो और चाहे बेसिक नॉलेज में मनुष्य गुरु हो, वो शादी को समाप्त नहीं करते। क्योंकि जानते हैं अगर हम शादी की संस्था को कैंसिल करेंगे तो हमारा रोटी पानी चलने वाला नहीं, और सारी सन्यासी हो जाएंगे तो हमको कौन कमा कमा के खिलाएगा? हमको मेहमानियां चाहिए, अटारियां चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, कहाँ से आवेगा? सन्यासियों को खिला देंगे क्या? सन्यासियों को कौन खिलाता है? ग्रस्ती खिलाते। तो वो कभी ये परमिशन नहीं दे सकते कि तुम शादी करना छोड़ दो। ये शादी कराना पापात्माओं का काम है। भगवान बाप एक बात कहता है और तुम दूसरी बात करते हो क्या? भगवान एक बाप और एक ही बात करता है और वो बात कभी बदलता नहीं, तुम दूसरे काम करते हो। तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बनते रहते हो। बाबा ने लिख करके भेज दिया, एक तरफ पापात्मा बनते जाते हो और दूसरी तरफ भगवान को बुलाते हो कि बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, हमारी आत्मा को पावन बनाओ। हम पापात्मा बन पड़े हैं क्या? हम पापात्मा बन पड़े हैं, हमको मनुष्य से क्या बनाओ? देवता पुण्यात्मा बनाओ। अभी मैं आया हूं तो तुम शादी कराते रहते हो, पाप के काम कराते रहते हो, बुलाते हो बाबा हमको पावन बनाओ, जन्म जन्मांतर बुलाते रहे। अभी समझो तो, बाप पावन बनाने आए हैं क्या? सिर्फ ज्ञान सुना करके ब्रह्मा के तन में चले जाने के लिए नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं?
पावन।
बाप पावन बनाने आए हैं। आने का मकसद क्या है? पावन बनाना मकसद है, ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है। भगवान का एम ऑब्जेक्ट ज्ञान सुनाना नहीं है। ज्ञान किस लिए सुनाते हैं? ज्ञान तो इसलिए सुनाते हैं कि तुमको बाप की पहचान हो जाए, माया की और बाप की पहचान हो जाए, दोनों की पहचान हो गई तो माया के चंबे में फंसोगी नहीं, और माँ बाप जिसको तुमने पहचान लिया है उसके नजदीक आने की कोशिश करोगे, क्योंकि जानते हो एक बाप है पतितों को पावन बनाने वाला, एक बाप से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो पहचाना होगा तभी तो ऐसा करोगे, अगर पहचाना नहीं होगा तो कैसे करोगे। तो बाप पावन बनाने आए हैं, शादियों के लिए हाल बनाते रहते हो, बाप को हाल बनाकर नहीं दे सकते। पतित बनाने वालों को दे देते हो, मेरे को जन्म जन्मांतर बुलाते रहे हे पतित पावन आओ, अब मेरी इतनी अवज्ञा करते हो। भगवान वाच, ये चैरिटी हाल तुमने बनाया है, तो ट्रस्टियों को पूछ करके देना चाहिए ना। तो ख्याल आता है हम इन शादी कराने वालों को पत्र लिखें, देखें कोई का कान खुलता है या नहीं खुलता है। शादियों के हाल तो सब जगह बहुत हैं, धर्मशालाएं बनाई हुई है गांव गांव में, शहर शहर में, हम तो ज्ञान चिच्छा पर बिठाते हैं, ये काम चिच्छा पर बिठाते हैं, हम तो पतितों को पावन बनाते हैं। तो ये हाल बनाकर देने में तो बहुत फायदा है, उनको अच्छी तरह समझा करके शर्मसार करना चाहिए। अब मुफ्त में भी नहीं लेने के लिए तैयार है, हम तो किराया भी देने के लिए तैयार है, एक दिन दो दिन हम जो प्रोग्राम करेंगे उसका हम किराया भी देंगे, फिर भी हमको देते नहीं है, शादी कराने वालों को दे देते हैं। लिखना चाहिए तुम तो पाप का काम करते हो, भगवान को जन्म जन्मांतर बुलाते रहे पतित पावन आओ, वो आते हैं पावन बनाने के लिए, फिर तुम उनको टिकने के लिए स्थान भी नहीं देते। जब नहीं था इस दुनिया में तो बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाते रहे, और जब आता है प्रैक्टिकल में आकर के नई दुनिया स्थापन करता है, झूठ खंड को खलास करता है, सच खंड बनाता है, तो तुम उनको स्थान भी नहीं देते हो। कोई निकलेंगे ऐसे भी, कोई निकलेंगे जो समझेंगे बरोबर हम तो ये पाप का काम कर रहे हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस युग का नाम कैसा युग, पुरुषोत्तम संगम युग, संगम माने मेल, तो सतयुग त्रेता संगम युग नहीं है, सतयुग और त्रेता की जब संधि होती है तो उसे संगम नहीं कहेंगे, त्रेता और द्वापर की जब संधि होती है तो संगम युग नहीं कहेंगे, है? कहेंगे, और द्वापर और कलयुग की जब संधि होती है तो संगम युग नहीं कहेंगे, वो भी संगम युग कहेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे, उनको संगम युग तो कहेंगे, संगम तो होता है वहां, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग सिर्फ अब ही होता है, इसलिए भक्ति मार्ग में इसकी यादगार क्या बनाते हैं, हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, वो चौथी वर्ष मनाते हैं, वास्तव में है हर चौथे युग के बाद पुरुषोत्तम वर्ष की बात, जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में मनाते हैं। नाम पुरुषोत्तम युग क्यों रखा, क्योंकि और युगों में इस सारी सृष्टि के जो भी पुरुष मात्र हैं उनमें उत्तम से उत्तम कौन है ये प्रत्यक्ष नहीं होता, उत्तम के उत्तम की यादगार तो है, मनाते हैं हर धर्म में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्धि हर धर्म में उत्तम उत्तम आत्माओं को याद तो करते हैं लेकिन याद करते हुए भी जानते नहीं है किस रूप में है? हर धर्म में मान्यता है स्मरण करते हैं सिमरते हैं माला हिंदू भी माला सिमरते हैं सिमरण करना माने स्मरण करना कोई हुआ है तभी तो स्मरण करते हैं वो जो गोल गोल दाने हैं किसकी यादगार है आत्माओं की यादगार है तो उन आत्माओं को उनकी श्रेष्ठता को उनके पुरुषोत्तम पने को स्मरण भी करते हैं लेकिन स्मरण करते हुए भी बेचारे जानते
नहीं
जानते नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म वाले हों सिर्फ नास्तिक वालों को छोड़ के सब धर्म में माला घुमाई जाती है स्मरण करते हैं ना बेचारे जानते नहीं अभी बाप आकर समझाते हैं तुमने ये जो माला रूपी संगठन बनाया हुआ है यादगार जिसको तुम स्मरण करते हो चाहे 108 की माला हो चाहे किसी धर्म में 100 की माला हो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उन पुरुषार्थी आत्माओं की माला है जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते रहे राजयोग भगवान ने जब सिखाया था तब उन्होंने अपनी आत्मा में ये शक्ति भरी थी क्या राजा रानी बनने की तो ये पुरुषोत्तम संगम अभी चल रहा है ये पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने वाली आत्माएं अभी प्रत्यक्ष हो रही है ये किसी को मालूम नहीं है अगर ये बात किसी को पक्का पक्का मालूम हो जाए पक्का निश्चय बैठ जाए कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है कि जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं अभी यहाँ तैयार की जा रही है तो सब दौड़े दौड़े इस स्कूल में पढ़े लेकिन यहाँ तो जिनको परिचय मिला हुआ है वो भी रोज पढ़ाई
नहीं
पढ़ते रोज टीचर का डिसरिगार्ड करते रहते टीचर क्लास में पहले आ जाए और स्टूडेंट बाद में आए तो टीचर का रिकॉर्ड हुआ या डिसरिगार्ड हुआ टीचर का डिसरिगार्ड हो गया किसी को मालूम नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगति को है जबकि बाप आते हैं पवित्र बनाने बड़े बड़े आदमी जो बड़े बड़े कहे जाते हैं वो खास हाल बनाते हैं शादियों के लिए बर्बादी के लिए हाल बनाते हैं और मैं सारी दुनिया की आबादी करने के लिए आया हूं इतनी बड़ी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र आत्मा है 500-700 करोड़ सबको आबादी करके जाता हूं जो भी आत्मा परमधाम से आवेगी वापस इस सृष्टि पर वो पहले जन्म में आबादी में आवेगी या बर्बादी में आवेगी पहले जन्म में हरेक की सदगति होती है हरेक को सुखी ही मिलना है दुख दुख नहीं मिलना है तो भी देखो मेरा क्या हाल है मेरे को स्थान नहीं देते
देने में लगे
मेरे को स्थान नहीं देते शादियों के लिए हाल दे देंगे उनको समझाना चाहिए भगवान वाज का महाशत्रु है तो महाशत्रु का आवाहन करने के लिए शादियां कराते हो बड़े बड़े हाल बनाते हो और मैं जो काम महाशत्रु को 2500 साल के लिए सृष्टि से विदा कर देता हूं उनको तुम स्थान भी नहीं देते ये हाल तुम इसलिए बनाते हो ये काम नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारा और ही पाप बनता जाएगा क्या ये काम अगर नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारा और ही पाप बनता है ये दुनिया वालों से ही कहना है ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हो रहा है ब्राह्मण दुनिया में कहा हाल बनाते हैं शादियों के लिए झूठ बोलते हैं ऐसे ही ठोक देते हो हर बात को ब्राह्मणों की दुनिया में शादियों के लिए हाल कहाँ बनाते हैं न पैसे के बारे में ब्राह्मण वाले बनाते हैं क्या नहीं बनाते
अच्छा बेहद में
कैसे बेहद
आत्मा परमात्मा मिलन के लिए फुलकाल कम्बल बना हुआ
और बाद कंप्यूटर में शादियां कराते हैं काम विकार में डालने के लिए शादियां कराते हैं वहां तो और ही निश्चय पत्र लिखा लेते हैं ये गुरु लोग बदनामी ही करते रहते हैं कितना भी भगवान अच्छा काम कराए लिखवा लेते हैं इनसे भी लिखवाया हुआ है स्टाम्प लगवाया हुआ है पहले यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे लिख करके देते थे और अभी देखो स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं तब भी ऐसी बातें कर रहे
हम तो आत्मा परमात्मा बात कर रहे हैं
आत्मा परमात्मा की तो बात कर रहे हैं कहा वहां शादी होती है
सर ये मिलन तो होता है ना मन
मिलन को शादी थोड़ी कहा जाता है आत्मा परमात्मा के मिलन से तो आत्माएं पवित्र बनती हैं और शादी की तो बात ही नहीं हाँ बेसिक वालों में ऐसा जरूर होता है जो भगत लोग जानते ही नहीं है कि ऐसा वहां भी हो रहा है जब कन्याएं सरेंडर होती है समर्पित होती है तो भगवान को सौंपी जाती है समर्पित हुई कन्याएं भगवान को सौंपी जाती है या कोई भाइयों को सौंप दी जाती है ले जाओ सेंटर खोलो चलाओ भगवान को सौंपी जाती है कि भाई लोगों को कंट्रोल में चली जाती है भाइयों के कंट्रोल में चली जाती है अब जो भाई ले जाते हैं वो पतित मनुष्य है या भगवान है पतित मनुष्य है पतित मनुष्य फिर क्या करेंगे पतित ही बना देंगे नीचे ही गिरा देंगे अरे भगवान को समर्पित हुई है कहते हैं भगवान को समर्पित हुई लेकिन प्रैक्टिकल में उन्हें कंट्रोल कौन करता है पति उनका पाति पाति माने रक्षा करने वाला रक्षक कौन बनता है भाई लोग बनते हैं मनुष्य बनते हैं तो ये शादी के लिए हुआ सेंटर खोला वो शादियां हो रही है वहां या आबादी हो रही है सचिव की बेचारी कन्याएं अकेली भेज दी जाती है कोई माता भी साथ में नहीं दी जाती नहीं तो बाबा ने नियम बनाया है कन्या है तलवार और माता है ढाल अकेली तलवार कोई काम नहीं कर सकती इसलिए माता के साथ कौन होना चाहिए माता के साथ कन्या होना चाहिए ढाल के साथ तलवार होना चाहिए तलवार अकेली काम नहीं कर सकती तलवार वार करेगी बचाव के लिए माता चाहिए तो वहां तो सारे काम उल्टे हो रहे हैं जैसे दुनिया में सारा भक्ति मार्ग का ढकोसला चल रहा है वैसे वहां भी भक्ति मार्ग का ढकोसला चल रहा है उससे दुनिया पावन नहीं बन सकती और ही पतित बनते जाएंगे तो बाप कहते ये काम करना तुम नहीं छोड़ेंगे तो पाप और ही बढ़ता जाएगा सब पाप से ही होता है पुण्य से कैसे होगा पुण्य से पुण्यात्माओं की दुनिया बनेगी कि पापात्माओं की दुनिया बनेगी पुण्य करेंगे तो पुण्यात्माओं की दुनिया बनेगी और पुण्य करना कोई सिखाता ही नहीं सब पापी है इस संसार में दृष्टि से पाप करते हैं वृत्ति माना वातावरण बिगाड़ करके सब पाप करते हैं वाइब्रेशन से पाप करते हैं वाचा से पाप करते हैं कर्मेंद्रियों से पाप करते हैं कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करता तो पाप आत्माएं जो है वो पुण्य की दुनिया कैसे स्थापन करेंगे मैं ही जब इस सृष्टि पर आता हूं जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं देह के बंधन में नहीं आता हूं तो कर्मेंद्रियों के बंधन में भी नहीं आता हूं तो मैं ऐसी आकर के सच्ची वाणी बोलता हूं जिससे सचखंड स्थापन होता है सच्चा काम करता हूं जिससे सचखंड स्थापन होता है सच्चा वाइब्रेशन फैलाता हूं उनके काम करने से ये शादियां वगैरह हाल बनाने से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे खान पान आदि सब पाप आत्माओं का है दान आदि भी पाप आत्माओं को देते हैं क्या जो भी दान करते हैं पुण्य करते किसको करते हैं सारी दुनिया में सब पाप आत्मा है तो किसको देते हैं पाप आत्मा को देते हैं यहां तो बात ही निराली है तुम किसको देते हो हम तो बाप को देते हैं हम कोई पापात्माओं को देते ही नहीं है यहां तो तुमको 21 जन्मों के लिए पद्म पदम पति बनाता हूं क्योंकि तुम बाप को देते हो, कोई देहधारी को पाप आत्मा को नहीं देते हो, तुम तो पुण्य आत्मा बनाने वाले हो। पुण्यात्मा बनाने वाले बाप के सहयोगी हो और पुण्यात्माएं होते ही है देवताएं। दुनिया पाप पुण्य क्या होता है इसकी गति को जानती ही नहीं। पाप पुण्य की गति मैं आकर के समझाता हूं। पाप कैसे बनता है, पुण्य कैसे बनता है, कर्म कैसे बनता है, अकर्म कैसे बनता है, विकर्म कैसे बनता है, सुकर्म कैसे बनता है, वो मैं आकर के बताता हूं। जब जानते ही नहीं है तो पाप ही करते रहेंगे। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए पुण्यात्मा बनाता हूं, पदमा पदम पति बनाता हूं। अच्छा, बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट।